पृष्ठ संख्या 23। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के राज्यकाल में वजही अत्यंत प्रतिष्ठित कब गुजरा है? कहा जाता है कि उसने बादशाह की वास्ता प्रेम कहानी कुतुब मुश्तरी नाम से लिखी और बादशाह ने बड़ी उदारता से उसे अपने युग का सबसे बड़ा कवि कहकर अपना मित्र बनाया। कुतुब मुश्तरी एक बड़ी मनोरंजक मसनवी है जिसका नायक कुली कुतुब शाह है। श्रृंगार रस में डूबी हुई यह प्रेम गाथा वजही की एक कल्पनात्मक रचना है। यह कहना तो ठीक ना होगा कि यह सारी की सारी कहानी बादशाह के जीवन से ली गई है, परंतु इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि वजही ने अपनी काल्पनिक कहानी की आड़ में बादशाह की वीरता, उदारता, दानशीलता और प्रेम भावना का चित्र खींचने की कोशिश की है। दक्षिण की उत्कृष्ट काव्य कृतियों में इसका एक ऊंचा स्थान है। यह कहानी दक्कन और बंगाल के बीच में घूमती है और उस समय की कथाओं की तरह असंभव बातों से भरी हुई है। उसकी भाषा बहुत सुगम नहीं कही जा सकती, उसमें जहाँ तहाँ फारसी अरबी के शब्द हैं, वहीं संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की भी कमी नहीं है। केवल यही नहीं, वजही ने भाषा के संबंध में बड़ी आज़ादी से काम लेकर फारसी अरबी और संस्कृत शब्दों का उर्दू व्याकरण के नियमानुसार प्रयोग किया है। कुतुब मुश्तरी छप चुकी है और इन पंक्तियों के लेखक का विचार है कि यदि उसे केवल भाषा की दृष्टि से पढ़ा जाए तो भी बहुत लाभ होगा। उदाहरण के लिए यह शेर देखिए, छिपी रात उजाला हुआ दीस का, लगा जग करण सेव परमेश का, जो आया झलकता सूरज डाट कर, अंधेरा जो था सो गया नहाट कर, सूरज यूं है रंग आसमानी मने कि खिलिया कमल फूल पानी मने। वजही ने गद्य में भी सबरस के नाम से एक उत्कृष्ट पुस्तक लिखी है। इसमें तशऊफ के अभिप्राय गर्भित विचार भी प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसका वर्णन आगे आएगा। सारांश यह कि वजही उस युग का सबसे बड़ा कवि और लेखक माना जाता है। उसे गद्य और पद्य दोनों पर पूर्णतः अधिकार प्राप्त था। वजही की जीवन कथा अभी तक मालूम नहीं हो सकी, परंतु यह मालूम है कि कुतुब मुश्तरी 1608 ईस्वी और सबरस 1635 ईस्वी में लिखी गई। इस युग का दूसरा बड़ा कवि गवासी था। कुतुबशाही राज्य ने उसे मलिकुश्शुअरा कविराय बना दिया था, परंतु उसके हालात का ठीक से पता नहीं चलता। उसकी प्रसिद्ध रचनाएं सैफुल मुल्को बदी उल जमाल और तूतीनामा हैं। दोनों में ही कहीं कहीं उसने अपने संबंध में भी थोड़ा बहुत लिखा है, परंतु उससे पृष्ठ संख्या 31 उसके जीवन की पूरी कहानी नहीं बनती। बस इतना ज्ञात होता है कि आरंभ में बड़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत करता था। जब राज दरबार में पहुंच गया तो उसकी मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई और वह अपने युग का सबसे बड़ा कवि गिना जाने लगा। सैफुल मुल्क 1624 ईस्वी में लिखी गई और तूतीनामा 1631 ईस्वी में पहली मसनवी एक प्रेम कहानी है जो अलफ लैला से ली गई है, और दूसरी रचना हितोपदेश के एक फारसी अनुवाद पर आधारित है। गवासी अपनी कविताओं में अपना बखान आप करता है, मगर उसका यह बखान कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि वास्तव में उसकी कविताएं रस और भावुकता, सुंदरता और मजे से भरी हुई हैं। उसकी भाषा में फारसी अरबी के शब्द कम मिलते हैं, उसकी शैली में सरलता और प्रवाह बहुत है। सैफुल मुल्क हिंदी और उर्दू दोनों लिपियों में प्रकाशित हो चुकी है। कुतुबशाही युग का तीसरा बड़ा कवि इब्ने निशाती था। उसकी प्रसिद्ध मसनवी फूलबन है जो दक्षिणी उर्दू के साहित्य कोश का एक अनमोल रत्न समझी जाती है। इब्ने निशाती की जीवन गाथा भी भली भांति मालूम नहीं है। कुछ पुराने लेखकों ने, जिनमें गारसद अतासी का नाम भी लिया जा सकता है, लिखा है कि उसने भी तूतीनामा के नाम से एक काव्य लिखा है, परंतु यह उनकी भूल है। इसी प्रकार फूलबन के संबंध में भी कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं जो ठीक नहीं हैं। अब फूलबन प्रकाशित हो चुकी है और उसके अध्ययन में ठीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उसके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इब्ने निशाती फारसी भाषा में निपुण और काव्य शास्त्र में से भली भांति परिचित था। वह फूलबन के प्रारंभिक भाग में अपनी और अपनी कविता की सराहना करता है और कहता है कि उसने गद्य में भी कई रचनाएं की हैं। अब उनमें से कोई भी प्राप्य नहीं है। उसे भाषा और शब्दों के प्रयोग पर पूरा अधिकार था। वह जिस सफलता से मनोभावनाओं का चित्रण करता है, उसी प्रकार सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन भी कर सकता है। फूलबन एक प्रेम कथा है जिसकी पृष्ठभूमि भारतीय है। इसमें जीवन के ऐसे चित्र खींचे गए हैं जिनके देखने से उस युग की सामाजिक स्थिति, रहन-सहन, रीति रिवाज के समझने में बड़ी सहायता मिलती है। जैसा कि कहा जा चुका है कि दरबारी संरक्षण और जनप्रियता के कारण बीजापुर और गोलकुंडा में बहुत से कवि पैदा हो गए थे। यहाँ उनके नाम भी नहीं दिए जा सकते, परंतु इस बात को अवश्य याद रखना चाहिए कि दक्षिणी उर्दू, जो उस समय खड़ी बोली की साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम थी, भारतीय भाषाओं के खजाने में बहुत कुछ बढ़ा चुकी थी। इसमें संदेह नहीं कि उसके साहित्य पर फारसी का भी प्रभाव था, परंतु यह बात स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता की जो लहर मुगल युग में उत्तरी भारत से उठ रही थी, उसका विकास साहित्यिक रूप से दक्षिण भारत ही में हो रहा था। इसके अतिरिक्त एक और प्रेम मार्ग पर चलने वाले भक्त कवि इस्लामी तसव्वुफ को अपना विषय बनाकर गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं कर रहे थे, और दूसरी ओर इमाम हुसैन के पृष्ठ संख्या 32 प्रति श्रद्धा प्रकट करने वाले कवि करबला की उत्सर्ग वेदी का शोकपूर्ण चित्रण मरसियों और दूसरी धार्मिक कविताओं में कर रहे थे।